इंदिरा गांधी को अपने शासनकाल में कई नामों से पुकारा गया। राम मनोहर लोहिया ने उन्हें गूंगी गुड़िया कहा तो अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें साक्षात दुर्गा की संज्ञा दी। याहिया खान ने उन्हें अपमानजनक ढंग से वो औरत कहकर पुकारा तो रिचर्ड निक्सन ने उन्हें बूढ़ी चुड़ैल तक कह डाला। दक्षिण में उनके चाहने वाले उन्हें अम्मा कहते रहे तो कुछ ने उन्हें सिर्फ वो कहकर संबोधित किया। 1968 में जब वो अमरीका गईं तो राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन के सामने भी समस्या आई कि उन्हें किस नाम से पुकारा जाए। जाने माने पत्रकार इंदर मल्होत्रा याद करते हैं।
लेकिन नेहरू साहब तो वो एम्बेसडर थे वहाँ, इनका टेलीफोन 6:30 बजे बजना शुरू हो गया तो देखा कि जी व्हाइट हाउस से टेलीफोन है, प्लीज बिजू, प्रेसिडेंट वांट्स टू नो हाउ डज ही एड्रेस योर प्राइम मिनिस्टर, डज ही कॉल मैडम प्राइम मिनिस्टर, जस्ट प्राइम मिनिस्टर और इंदिरा और मिसेस गांधी या व्हाट। ही सेड लुक आई विल टॉक टू हर एंड देन कम बैक टू यू। तो गए उनके पास तो उन्होंने कहा कि भाई उसको कहो जो कहना चाहे कह ले, प्राइम मिनिस्टर कह ले, मिसेस गांधी कह ले, इंदिरा कह ले। और जो निकलने लगे कमरे से, नहीं नहीं बिजू भाई एक मिनट ठहरिए, कि मैनी ऑफ माई कैबिनेट मिनिस्टर्स कॉल मी सर, यू कैन डू द सेम।
1971 का चुनाव उन्होंने गरीबी हटाओ के मुद्दे पर लड़ा और अभूतपूर्व जीत दर्ज की। उनके शपथ लेने के 12 दिनों बाद बांग्लादेश संकट की शुरुआत हुई। कूटनीति और सैनिक शक्ति का जबरदस्त सामंजस्य दिखाते हुए उन्होंने बांग्लादेश के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 3 दिसंबर 1971 की शाम को पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया। कोलकाता से देर रात लौटने के बाद उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई, तीनों सेनाध्यक्षों से मंत्रणा की और रात 12:30 बजे लगभग कांपती हुई आवाज में देश को संबोधित किया।
आपसे मैं एक खतरे के समय बोल रही हूँ। कुछ ही घंटे पहले करीब 5:30 बजे शाम के 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया। पाकिस्तानी हवाई जहाजों ने हमारे अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुर, उत्तरलाई, जोधपुर, अंबाला और आगरे के हवाई अड्डों पर बमबाजी की। मुझे संदेह नहीं है कि सारे भारत की जनता, सब राजनीतिक दल और सब नागरिक इस समय एक हैं। सबका संकल्प है कि इस हमले का निर्णयात्मक ढंग से समाप्त कर दिया जाए।
13 दिनों तक चले युद्ध के बाद 16 दिसंबर को पाकिस्तान के 95,000 सैनिकों ने बांग्लादेश में हथियार डाल दिए। बांग्लादेश आजाद हुआ। ठीक 4:31 पर इंदिरा गांधी के लाल फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ भारत के थल सेना अध्यक्ष सैम मानेकशॉ थे। उन्होंने सिर्फ 3 शब्द कहे, यस, यस और थैंक यू। उस समय उनका इंटरव्यू ले रहे स्वीडिश टेलीविजन क्रू से उन्होंने माफी मांगी और तेज कदमों से लोकसभा की ओर बढ़ी।
आई हैव एन अनाउंसमेंट टू मेक for which I think the House has been waiting for some time. The West Pakistan forces have unconditionally surrendered in Pakistan. Dhaka is now the free capital of a free country.
ये निश्चित रूप से इंदिरा गांधी का स्वर्णिम क्षण था, लेकिन उनकी जिस प्रवृत्ति ने उन्हें लोगों का और चहेता बना दिया वो थी भारत के सम्मान, प्रभुसत्ता और सामरिक हितों से कोई समझौता न कर पाना। एक जमाने में उनके आलोचक रहे वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक प्रभाष जोशी ने बीबीसी को बताया था,
जब इंदिरा गांधी दिल्ली में राज कर रही थी तो ऐसा लगता था कि भारत एक ताकत है। ऐसा लगता था कि भारत दुनिया में कोई अपनी स्वतंत्र हस्ती बना के रह रहा है, क्योंकि वो एक नए भारत का ऐसा आत्मविश्वास अपने जरिए प्रकट करती थी जिसको आप हम सब शेयर कर सकते थे। यानी मुझे वो क्षण याद है जब दिल्ली के रामलीला मैदान में बांग्लादेश के युद्ध के बाद सभा हुई तो उसमें वो जो एक अपने गायक थे ना महेंद्र, वो उन्होंने बेटी हिंदुस्तान की गीत गाया था। रेहान साहब, मैं इंदिरा गांधी को लेके भावुक नहीं होता हूँ, लेकिन मैं अपने बेटे को कंधे पर बिठा के लेके गया था और जब महेंद्र कपूर ने वो गाना गाया तो मैं खड़ा हुआ और बेटे को कंधे पे लेकर कहा कि बेटा ताली बजा।
1971 में इंदिरा गांधी अपनी लोकप्रियता के चरम पर थी, लेकिन अच्छे दिन बहुत दिनों तक नहीं रहते। भारत को युद्ध की भारी आर्थिक कीमत चुकानी पड़ी। पहले गुजरात के छात्रों में असंतोष फैला और फिर बिहार में जयप्रकाश नारायण ने उनके खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें चुनावी अनियमितताओं का दोषी पाते हुए रायबरेली से उनका चुनाव रद्द कर दिया। इस्तीफा देने के बजाय उन्होंने अपने विरोधियों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया और आपातकाल की घोषणा कर दी।
भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आप सभी गहरे और व्यापक षड्यंत्र से अवगत होंगे जो उस समय से रचा जा रहा है जब से मैंने भारत के जनसाधारण के लाभ के लिए कुछ प्रगतिशील उपाय करने शुरू किए। प्रजातंत्र के नाम पर प्रजातंत्र के काम को ही
उनके इस कदम को न सिर्फ उनके राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी भूल माना गया बल्कि इससे भारतीय जनमानस में उनकी छवि को बहुत बड़ा धक्का लगा। उस समय उनके वैज्ञानिक सलाहकार अशोक पारसार्थी याद करते
हैं। I have never agreed and I do not agree today that the declaration of emergency was the answer to that.
मैं उस समय भी सहमत नहीं था और आज भी सहमत नहीं हूँ कि आपातकाल की घोषणा इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से निपटने का सही समाधान था। मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उस समय सुप्रीम कोर्ट के वेकेशन जज ने अपने निकटवर्ती लोगों को स्पष्ट कर दिया था कि अगर इंदिरा गांधी इस फैसले के खिलाफ अपील करती हैं तो वो बिना झिझक इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को निरस्त कर देंगे, बशर्ते इंदिरा पहले अपने पद से इस्तीफा दे दें।
मैंने अशोक पारसार्थी से पूछा कि इंदिरा गांधी ने इस जज और अपने सलाहकारों की बात क्यों नहीं मानी।
An absolutely bizarre view that if she left the Prime Minister's chair,
उनका बहुत अजीब ख्याल और डर था कि अगर उन्होंने सिर्फ एक घंटे के लिए भी प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ दी तो उनके मंत्रिमंडल का कोई वरिष्ठ सहयोगी उस पर कब्जा कर लेगा और उसको कभी भी उनके लिए नहीं छोड़ेगा। मैं, मोनी मल्होत्रा और नटवर सिंह इस मुद्दे पर बात किया करते थे और हमने ये तय किया था कि नटवर सिंह उनसे मिलकर उनकी आशंकाओं को दूर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम अपने उद्देश्य में सफल हो नहीं पाए।
अशोक पारसार्थी के शब्द। प्रभात जोशी का भी मानना था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद इस्तीफा न देने से इंदिरा गांधी का कद बौना हो गया और इतिहास में उनको वो जगह नहीं मिल पाई जिसकी कि वो हकदार थी।
देखिए, सबसे अच्छा ये होता कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया था तो वो कहती कि जब तक स्टे लगा हुआ है मैं प्रधानमंत्री नहीं रहूंगी, मैं पद से इस्तीफा देकर जब सुप्रीम कोर्ट मेरे नाम को क्लियर करेगी तब मैं फिर से प्रधानमंत्री होंगी। वो अपनी खड़ाऊ निकाल कर किसी को भी सौंपती। कोई मैं तब इतनी ताकत नहीं होती कि वो नैतिक या राजनीतिक रूप से इंदिरा गांधी को चुनौती दे सकता था। यानी आप सोचिए कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री पद छोड़ने के बाद इस देश में ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा स्वीकार्य हुई बजाय कि प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार के नाते। अगर इंदिरा गांधी इस्तीफा दे देती और उस तक का रास्ता देखती जब तक कि सुप्रीम कोर्ट उनको क्लियर करती है तो वो भारत के लोकतंत्र में और भारत की राजनीति में टनों सीमेंट डाल देती जिसको कोई तोड़ नहीं सकता था।
अपने छोटे बेटे संजय गांधी को राजनीति में अपना उत्तराधिकारी बनाने की उनकी कोशिश भी नाकामयाब हो गई। 1977 में उनकी हार के लिए बहुत हद तक आपातकाल में की गई ज्यादतियों और संजय गांधी के जबरन नसबंदी कार्यक्रम और अखड़ स्वभाव को जिम्मेदार ठहराया गया, लेकिन उन्होंने आखिरी दम तक संजय का बचाव किया। ये अलग बात है कि नियति को ये मंजूर नहीं था। 1980 में एक विमान दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। इंदर मल्होत्रा याद करते हैं,
इन्होंने जब तय कर लिया कि भाई लीडरशिप अपने ब्लड स्ट्रीम में रहेगी तो ऑब्वियस चॉइस था और वो कुछ पॉलिटिकल सेवी भी लगता था और उसने यह असर भी कह दिया कि भाई ही कैन गेट थिंग्स डन। शी वॉज फिक्सेटेड और संजय का कोई आदमी आके टीका टिप्पणी कर दे इनके सामने वो इनको बर्दाश्त नहीं होता था। कासिम साहब सैयद मीर कासिम ने बताया मुझको कि जब ये लग गया कि भाई अब इलेक्शन होगा ये जनता गवर्नमेंट नहीं चल सकती तो ये कश्मीर गई थी और उनको खाने पर बुलाया, बातचीत हो रही थी तो उनसे कहा उन्होंने کہ آپ کا خیال ہے کہ اب یہ الیکشن تو ہوئی گا تو ہم لوگ واپس آ سکتے ہیں؟ تو قاسم صاحب نے مجھے یہ بتایا تھا کہ میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے آپ لیڈرشپ ہاتھ میں لے کے چلائیں گی تو واپس آنا لازم ہے, اور اگر آپ نے سنجے کے ہاتھ میں لیڈرشپ کر دی تو میں نہیں کہہ سکتا کیا ہو. تو وہ کہنے لگے, اس قدر ناراض ہوئی, تھوڑی دیر میں کہا دیکھیے میرے سر درد ہو رہا ہے, میں کھانا نہیں کھاؤں گی, آپ کھانا کھائیے. تو اس کے میں نے بھی کہا کہ صاحب میں آپ نہیں کھا رہی تو میں پھر یہاں اکیلا بیٹھ کے نہیں کھاؤں گا. اس کے بنا کھانا کھائے میں بھی چلا آیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ سنجے واز ہر گریٹ ویکنیس.
اس کے باوجود اندرا گاندھی کو یاد کیا جائے گا پرتیکول پرستھتیوں میں کڑے نرنے لینے کی ان کی جرت کے لیے, چاہے ڈگول ہوں یا بریجنیو یا رچرڈ نکسن یا ہیرولڈ ولسن یا ایڈورڈ ہیتھ. ان کا بڑے سے بڑا آلوچک بھی نہیں کہہ سکتا کہ ان کے سمے میں بھارت کسی بھی وشو شکتی کا پٹھو بن کر رہا. اندرا گاندھی ووادسپد ضرور تھی, ان کی ایک جٹل شخصیت بھی تھی, لیکن کوئی ان کی اندیکھی نہیں کر سکتا تھا. وہ ایک اسٹیریو ٹائپ راجنیتک نہیں تھی. انہوں نے پرچلت ماندنڈوں کی کبھی پرواہ نہیں کی. روندرناتھ ٹیگور کی پنکتیاں یاد آتی ہیں جو انہیں بھی کافی پسند تھی.
جدی تور ڈاک شونے کیوں نہ آشے تبے اکلا چلو رے, جدی تور ڈاک شونے کیوں نہ آشے تبے اکلا چلو رے, تبے اکلا چلو اکلا چلو اکلا چلو اکلا چلو رے, تبے اکلا چلو اکلا چلو.
ریحان فضل, بی بی سی دلی.